एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है, श्रोताओं का स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय की दुनिया में झांक रहे हैं जो अक्सर हमें टीवी स्क्रीन पर बहुत ग्लैमरस, बहुत अचूक सा नजर आता है। मेरा मतलब है फोरेंसिक विज्ञान। पर क्या ये वाकई वैसा ही है जैसा दिखाया जाता है?
सवाल तो यही है और शायद जवाब है बिल्कुल नहीं। और इसी असलियत को समझने के लिए हम आज जिम फ्रेजर के काम और उनके नजरिए का सहारा लेंगे। फ्रेजर इस फील्ड के, आप कह सकते हैं, एक दिग्गज हैं।
अच्छा।
और उनका काम हमें दिखाता है कि फोरेंसिक विज्ञान वो कोई निश्चित नतीजों का सीधा रास्ता नहीं है, बल्कि ये एक जटिल इंसानी कोशिश है जिसमें अपनी सीमाएं हैं, अपनी चुनौतियां हैं।
और ये समझना जरूरी क्यों है? मतलब ठीक है टीवी जैसा नहीं है, पर
जरूरी इसलिए है क्योंकि इसका सीधा असर न्याय पर पड़ता है। फोरेंसिक सबूत अदालत में बहुत मायने रखते हैं, है ना?
हाँ बिल्कुल।
तो अगर हम इनकी ताकत और इनकी सीमाओं दोनों को नहीं समझेंगे तो गलती की गुंजाइश बनी रहती है। मतलब सोचिए, किसी बेगुनाह को सजा मिल सकती है या कोई गुनहगार शायद छूट जाए।
सही कहा। तो आज की ये चर्चा एक तरह से हमें फोरेंसिक दावों को थोड़ा थोड़ा बारीकी से परखना सिखाएगी। तो फिर ये जिम फ्रेजर है कौन जिनकी बात हम कर रहे हैं? इनकी बात में इतना वजन क्यों है?
जिम फ्रेजर, वो स्कॉटलैंड की यूनिवर्सिटी ऑफ स्ट्रैथक्लाइड में फोरेंसिक साइंस के प्रोफेसर हैं और वहाँ सेंटर फॉर फोरेंसिक साइंस के निदेशक भी। तो अकादमिक तौर पर तो उनकी पकड़ बहुत गहरी है ही।
यानी थ्योरी तो मजबूत है, पर क्या ये सिर्फ किताबी ज्ञान है या जमीनी हकीकत से भी वास्ता है, फील्ड एक्सपीरियंस है?
यही तो खास बात है, उनका अनुभव सिर्फ क्लासरूम तक नहीं है। उन्होंने 40 साल से ज्यादा, सोचिए 40 साल से ज्यादा एक प्रैक्टिशनर के तौर पर काम किया है।
40 साल?
हाँ, हजारों आपराधिक मामलों में उन्होंने सबूत पेश किए हैं और इनमें ब्रिटेन के कुछ बेहद हाई प्रोफाइल, मतलब बहुत चर्चित केस भी शामिल हैं, जैसे रेचल निकल केस, डेमिलुला टेलर, स्टीफन लॉरेंस हत्याकांड।
अरे वाह, तो इसका मतलब उन्हें लैब की बारीकियां भी पता है, क्राइम सीन की जो असल चुनौतियां होती हैं वो भी, और कोर्टरूम का माहौल कैसा होता है वो भी। इन तीनों का सीधा लंबा अनुभव है, ऐसा कॉम्बिनेशन तो कम ही मिलता है।
बिल्कुल, और यही अनुभव उनके नजरिए को इतना अहम बनाता है, इतना वजनदार। वो सिर्फ तकनीकों की बात नहीं करते, वो फोरेंसिक विज्ञान के जो दार्शनिक आधार है ना, उन पर सवाल उठाते हैं।
दार्शनिक आधार?
जैसे
जैसे
जैसे कि सबूत का असल मतलब क्या है, हम जो नतीजे निकालते हैं उन तक पहुंचते कैसे हैं, क्या हमारा तरीका तार्किक है, और सबसे जरूरी, हमारी अपनी सोच की गलतियां जिन्हें हम संज्ञानात्मक पूर्वाग्रह या कॉग्निटिव बायस करते हैं।
हाँ बायस,
वो हमारे काम पर कैसे असर डाल सकती हैं, वो इस क्षेत्र की सीमाओं को बहुत ईमानदारी से स्वीकार करने और वैज्ञानिक कठोरता पर, मतलब रिगर पर जोर देने के लिए जाने जाते हैं।
तो अगर फ्रेजर के काम का एक निचोड़ निकालना हो, एक सेंट्रल आइडिया, तो वो क्या होगा? फोरेंसिक विज्ञान के बारे में उनका मुख्य तर्क क्या है?
उनका केंद्रीय तर्क है, हमें टीवी और फिल्मों से बने उस सीएसआई इफेक्ट के भ्रम से बाहर निकलना होगा। आपने सुना होगा सीएसआई इफेक्ट के बारे में?
हाँ हाँ सुना है कि फोरेंसिक वाले आएंगे और चुटकियों में केस सॉल्व कर देंगे।
एग्जैक्टली, ये इफेक्ट हमें यकीन दिलाता है कि फोरेंसिक विज्ञान कोई जादू की छड़ी है जो हर केस सुलझा सकती है, वो भी फटाफट और बिना किसी गलती के। फ्रेजर कहते हैं कि ये सोच न सिर्फ गलत है बल्कि खतरनाक भी हो सकती है।
खतरनाक क्यों? गलत तो समझ आता है, पर खतरनाक कैसे?
खतरनाक इसलिए क्योंकि ये जूरी, जज, यहां तक कि पुलिस और वकीलों से भी अवास्तविक उम्मीदें पैदा करती है। जब असलियत उन उम्मीदों पर खरी नहीं उतरती तो या तो निराशा होती है या फिर सबूत को जरूरत से ज्यादा वजन दे दिया जाता है।
अच्छा समझी, तो फिर असलियत क्या है? अगर ये जादू नहीं है तो ये है क्या?
असलियत ये है कि फोरेंसिक विज्ञान एक मानवीय प्रक्रिया है, मतलब इसमें इंसान शामिल हैं। तकनीक जरूर है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उसके साथ ही इंसानी व्याख्या यानी इंटरप्रिटेशन और संदर्भ यानी कॉन्टेक्स्ट, इनका बहुत बड़ा रोल है। कोई भी सबूत वो अपने आप में पूरी कहानी नहीं कहता, उसका मतलब उस मामले के पूरे संदर्भ में समझना पड़ता है, और क्योंकि इसमें इंसान शामिल हैं तो जाहिर है अनिश्चितता की गुंजाइश है, व्यक्तिपरकता यानी सब्जेक्टिविटी, मतलब निजी राय का असर, और जैसा मैंने कहा पूर्वाग्रह, इनकी गुंजाइश हमेशा बनी रहती है।
मतलब लैब से रिपोर्ट आ जाना एक बात है, पर उस रिपोर्ट का असली मतलब क्या है ये समझना कहीं ज्यादा मुश्किल, ज्यादा जटिल काम है।
बिल्कुल, फ्रेजर इसी पर जोर देते हैं। उनका मानना है कि फॉरेंसिक विज्ञान का काम सिर्फ लैब में टेस्ट करना नहीं है, बल्कि उन टेस्ट के नतीजों का तार्किक और पारदर्शी तरीके से मतलब निकालना है। उनका बुनियादी सवाल है, न्याय प्रणाली में फॉरेंसिक विज्ञान की असली ताकत क्या है, और उससे भी जरूरी, इसकी सीमाएं क्या हैं?
सही।
वो निश्चितता के पीछे भागने के बजाय अनिश्चितता को ईमानदारी से स्वीकार करने और उसे सही ढंग से मैनेज करने की बात करते हैं। ये नहीं कि हम कहें सबूत 100% पक्का है, बल्कि ये बताएं कि सबूत कितना मजबूत है और क्यों।
चलिए, इस नजरिए से फॉरेंसिक प्रक्रिया के कुछ हिस्सों को और गहराई से समझते हैं। शुरुआत करते हैं इसकी परिभाषा और इतिहास से। फ्रेजर फॉरेंसिक विज्ञान को कैसे परिभाषित करते हैं, मतलब उनके शब्दों में ये क्या है?
फ्रेजर के लिए ये सिर्फ कानून के लिए विज्ञान का इस्तेमाल नहीं है, ये इससे कहीं ज्यादा है। ये मूल रूप से निशानों, ट्रेसेस का अध्ययन है, यानी अतीत में हुई घटनाओं के पीछे छूट गए भौतिक अवशेष, चाहे वो कितने ही छोटे क्यों ना हो।
अच्छा, निशान।
हाँ, निशान। यहाँ सिर्फ विश्लेषण या एनालिसिस नहीं होता, बल्कि उससे ज्यादा महत्वपूर्ण काम होता है अनुमान लगाना, इन्फरेंस करना और व्याख्या करना, इंटरप्रिटेशन करना। सबूत खुद नहीं बोलते, उनकी कहानी संदर्भ के साथ समझनी होती है।
और इसका इतिहास, ये फील्ड कैसे विकसित हुई है?
अगर इतिहास देखें तो ये फील्ड पहचान के पुराने तरीकों जैसे शरीर के नाप लेने वाली बढ़तीलों की तकनीक थी, वहां से लेकर एडमंड लुकार्ट के उस मशहूर सिद्धांत तक पहुंची है कि हर संपर्क एक निशान छोड़ता है।
हाँ, एवरी कॉन्टैक्ट लीव्स अ ट्रेस।
बिल्कुल, लेकिन ये समझना जरूरी है कि ये हमेशा से एक विकसित होता क्षेत्र रहा है। इसमें लगातार सुधार भी हुए हैं और गलतियां भी हुई हैं। ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है कि जो शुरू में था वही आज भी है। ये बदल रहा है, बेहतर हो रहा है, लेकिन इसकी चुनौतियां भी बदल रही हैं।
क्राइम सीन की बात करें तो टीवी पर अक्सर इसे बहुत नाटकीय ढंग से दिखाया जाता है। सब कुछ एकदम परफेक्ट तरीके से कलेक्ट होता है। फ्रेजर के अनुसार इसका वास्तविक महत्व क्या है?
फ्रेजर कहते हैं कि क्राइम सीन पूरी प्रक्रिया की बुनियाद है, शायद सबसे महत्वपूर्ण कड़ी।
क्यों?
क्योंकि ये सिर्फ सबूतों का स्रोत नहीं है, ये उस संदर्भ का भी स्रोत है जिसके बिना सबूत बेमानी हो सकते हैं।
संदर्भ का स्रोत मतलब
क्राइम सीन पर लिए गए शुरुआती फैसले, क्या इकट्ठा करना है, कैसे करना है, क्या नजरअंदाज करना है, ये अक्सर बाद में बदले नहीं जा सकते और ये पूरी जांच की दिशा तय कर देते। अगर क्राइम सीन मैनेजमेंट ठीक ना हो या सबूत भारी चीजों से दूषित हो जाएं, कॉन्टेमिनेट हो जाएं।
हाँ, कॉन्टेमिनेशन तो बड़ा मुद्दा है।
बिल्कुल, तो वो सबूत लैब पहुंचने से पहले ही बेकार हो सकते हैं। लैब में विश्लेषण कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर क्राइम सीन पर काम ठीक से नहीं हुआ तो नतीजे भ्रामक हो सकते हैं, गलत दिशा में ले जा सकते हैं।
अब बात करते हैं फिंगरप्रिंट्स की। इन्हें तो लगभग अचूक माना जाता है ना? फिल्मों में तो कंप्यूटर स्क्रीन पर मैच फाउंड आ जाता है और केस सॉल्व।
हाँ, फिल्मों में तो यही होता है, पर यही फ्रेजर एक और आम धारणा को चुनौती देते हैं। देखिए, ये सही है कि हर व्यक्ति के फिंगरप्रिंट्स यूनिक माने जाते हैं, ये सिद्धांत है, लेकिन अपराध स्थल पर मिले प्रिंट्स अक्सर पूरे नहीं होते। वो आंशिक हो सकते हैं, धुंधले हो सकते हैं, किसी सतह पर खींचे हुए हो सकते हैं।
हाँ, असलियत में तो परफेक्ट प्रिंट मिलना मुश्किल होता होगा।
बिल्कुल, तो ऐसे अपूर्ण प्रिंट का किसी संदिग्ध के रिकॉर्ड में रखे गए साफ प्रिंट से मिलान करने की जो प्रक्रिया है, वो पूरी तरह वस्तुनिष्ठ या ऑब्जेक्टिव, या कह ले कि पूरी तरह मशीनी नहीं है। इसके लिए जो मानक तरीका इस्तेमाल होता है, ACEV।
ACV ये क्या है?
ACVE का मतलब है एनालिसिस, कंपैरिजन, इवैल्यूएशन और वेरिफिकेशन। ये चार कदम हैं। एनालिसिस में क्राइम सीन प्रिंट को देखा जाता है, कंपैरिजन में उसे संदिग्ध के प्रिंट से मिलाया जाता है, इवैल्यूएशन में परीक्षक तय करता है कि मैच है या नहीं या नतीजा क्या है, और वेरिफिकेशन में एक दूसरा परीक्षक उसी प्रक्रिया को दोहराता है।
अच्छा, तो इसमें व्यक्ति परखता कहाँ आती है?
वो आती है इवैल्यूएशन के स्तर पर, खासकर जब प्रिंट बहुत साफ ना हो, तब परीक्षक को अपना जजमेंट इस्तेमाल करना पड़ता है कि क्या समानताएं काफी हैं या जो अंतर दिख रहे हैं वो महत्वपूर्ण हैं या नहीं। यहीं पर व्यक्ति परक निर्णय, सब्जेक्टिव जजमेंट शामिल होता है।
तो आप कह रहे हैं कि फिंगरप्रिंट मिलान में भी मानवीय भूल या राय का असर हो सकता है, ये तो बड़ी बात है।
हाँ, और यहीं पर संज्ञानात्मक पूर्वाग्रह, कॉग्निटिव बायस का खतरा पैदा होता है। मतलब अगर परीक्षक को केस की दूसरी जानकारी पता है, जैसे पुलिस को संदिग्ध पर कितना शक है, तो ये जानकारी अनजाने में उसके निर्णय को प्रभावित कर सकती है।
इसका कोई उदाहरण है?
बिल्कुल, इसका एक बहुत बड़ा और चर्चित उदाहरण ब्रैंडन मेफील्ड केस है। 2004 में मैड्रिड में ट्रेन बम धमाके हुए थे। FBI के बहुत अनुभवी परीक्षकों ने घटनास्थल से मिले एक अधूरे प्रिंट का मिलान गलती से ब्रैंडन मेफील्ड से कर दिया था। मेफील्ड अमेरिका में रहने वाले एक वकील थे, मुस्लिम थे और उनका स्पेन के धमाकों से कोई लेना देना नहीं था।
ओ, फिर क्या हुआ?
उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। बाद में स्पैनिश अधिकारियों ने उसी प्रिंट का सही मिलान एक अल्जीरियाई नागरिक से किया, तब जाके मेफील्ड छूटे। इस केस ने दिखाया कि कैसे बाहरी जानकारी, जिसे कॉन्टेक्स्चुअल इन्फॉर्मेशन कहते हैं, परीक्षकों के निर्णय को प्रभावित कर सकती है और जिसे हम अचूक मानते हैं उसमें भी मानवीय चूक की कितनी गुंजाइश है। यहाँ तक कि वेरिफिकेशन का कदम भी हमेशा इस पूर्वाग्रह से बचा नहीं पाता।
ये तो वाकई सोचने वाली बात है। अच्छा, अब उन छोटे सबूतों के बारे में क्या जिन्हें ट्रेस एविडेंस कहते हैं, जैसे बाल, कपड़े के रेशे, कांच के छोटे टुकड़े, इनका क्या महत्व है?
ये वो सूक्ष्म सबूत हैं जहां लोकार्ड का सिद्धांत हर संपर्क एक निशान छोड़ता है सबसे ज्यादा लागू होता है। फ्रेजर ये स्पष्ट करते हैं कि ये सबूत शायद ही कभी डीएनए की तरह किसी एक व्यक्ति की निश्चित पहचान बताते हों।
तो फिर इनका फायदा क्या है?
इनका महत्व अक्सर संबंधों को जोड़ने में होता है, एसोसिएटिव लिंक्स बनाने में। यानी ये किसी व्यक्ति या चीज को किसी स्थान या दूसरे व्यक्ति से जोड़ने में मदद कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी पीड़ित के कपड़ों पर संदिग्ध के घर में पाए गए कारपेट जैसे रेशे मिलते हैं। ये साबित नहीं करता कि संदिग्ध ही हमलावर है, पर यह जांच की पहेली में एक टुकड़ा जोड़ता है।
तो इन सबूतों की ताकत कैसे आंकी जाती है, मतलब ये कितने मजबूत माने जाते हैं?
इनकी ताकत संभाव्यता, प्रोबेबिलिटी पर आधारित होती है। सवाल यह होता है कि इस सबूत के मिलने की कितनी संभावना है अगर संदिग्ध शामिल था, और कितनी संभावना है अगर वो शामिल नहीं था। ये इस पर निर्भर करता है कि वो चीज कितनी आम है या कितनी दुर्लभ।
उदाहरण दे सकते हैं?
हाँ, जैसे अगर पीड़ित पे नीली डेनिम का रेशा मिलता है तो वो बहुत आम है, बहुत से लोग पहनते हैं, उसका महत्व कम होगा। लेकिन अगर कोई बहुत ही दुर्लभ खास रंग का सिंथेटिक फाइबर मिलता है जो संदिग्ध की जैकेट से मैच करता है, तो उसका वजन ज्यादा होगा। साथ ही ये भी देखना होता है कि क्या वो निर्दोष रूप से भी वहां पहुंच सकता था। इसे इनोसेंट ट्रांसफर कहते हैं।
इनोसेंट ट्रांसफर?
हाँ, जैसे दो लोग बस में अगल बगल बैठे हों तो भी एक दूसरे के कपड़ों के रेशे ट्रांसफर हो सकते हैं, या किसी कॉमन जगह से किसी के कपड़ों पर आ सकते हैं। तो यहाँ निश्चितता के बजाय हमेशा संभावनाओं की भाषा में बात होती है। सबूत कितना संभाव बनाता है कि संदिग्ध शामिल था बनाम वो शामिल नहीं था।
अब आते हैं उस तकनीक पर जिसे अक्सर गोल्ड स्टैंडर्ड कहा जाता है, डीएनए। इसके बारे में तो शायद कोई शक शुबा नहीं होना चाहिए, ये तो पक्का सबूत देता होगा।
देखिए, फ्रेजर डीएनए की व्यक्तियों में भेद करने की जो अद्भुत क्षमता है उसको पूरी तरह मानते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि ये बहुत शक्तिशाली तकनीक है, लेकिन वो इसकी सीमाओं और खासकर इसकी व्याख्या की जटिलताओं पर भी उतना ही जोर देते हैं।
सीमाएं डीएनए में भी?
हाँ, उनका मुख्य बिंदु यह है कि किसी अपराध स्थल पर किसी व्यक्ति के डीएनए का मिलना अपने आप में ये साबित नहीं करता कि वो व्यक्ति अपराध में शामिल था।
ये थोड़ा चौंकाने वाला है, मैं समझी नहीं। अगर मेरा डीएनए कहीं मिला है जहां अपराध हुआ है तो
सवाल यह है कि वो डीएनए वहां कैसे पहुंचा। यहीं पर फ्रेजर प्रस्तावों की पदानुक्रम या हायरार्की ऑफ प्रोपोजिशंस का सिद्धांत लाते हैं। ये फोरेंसिक सोच का एक बहुत महत्वपूर्ण फ्रेमवर्क है। वो कहते हैं कि हमें तीन अलग अलग स्तरों पर सोचना चाहिए।
तीन स्तर? कौन कौन से?
पहला है स्रोत स्तर, सोर्स लेवल।
ये
सबसे बुनियादी सवाल है, क्या ये डीएनए नमूना संदिग्ध व्यक्ति का है? आजकल की डीएनए प्रोफाइलिंग तकनीक इसका जवाब बहुत सटीकता से दे सकती है। ये हुआ पहला लेवल।
ठीक है, सोर्स लेवल, मैच हेल मी।
दूसरा और ज्यादा अहम स्तर है गतिविधि स्तर, एक्टिविटी लेवल। यहां सवाल बदल जाता है। सवाल अब यह है, अगर ये डीएनए संदिग्ध का है तो ये यहां घटना स्थल पर पहुंचा कैसे? क्या ये अपराध करते समय छूटा या किसी निर्दोष संपर्क से आया? जैसे मान लीजिए संदिग्ध उस जगह एक दिन पहले आया था और उसकी त्वचा की कोशिकाएं वहां रह गईं, या किसी चीज के जरिए अप्रत्यक्ष रूप से ट्रांसफर हुआ।
अच्छा, मतलब डीएनए मिला पर वो आया कैसे, ये पता लगाना।
बिल्कुल। और तीसरा स्तर है अपराध स्तर, ऑफेंस लेवल। यहां अंतिम सवाल है, क्या संदिग्ध ने यह अपराध किया है? ये फैसला करना अदालत का काम है, वैज्ञानिक का नहीं।
तो वैज्ञानिक का काम सिर्फ डीएनए मैच बताना नहीं है, बल्कि ये भी बताना है कि उस मैच के क्या क्या संभावित कारण हो सकते हैं, गतिविधि स्तर पर राय देना है।
एग्जैक्टली। फ्रेजर का तर्क यही है कि फॉरेंसिक वैज्ञानिक की जिम्मेदारी गतिविधि स्तर पर सबूत का मूल्यांकन करना है, ना कि सिर्फ स्रोत स्तर पर रुक जाना, खासकर आजकल जब डीएनए तकनीक इतनी ज्यादा संवेदनशील हो गई है।
संवेदनशील मतलब?
मतलब वो त्वचा की कोशिकाओं जैसी बहुत छोटी मात्रा में डीएनए का भी पता लगा सकती है, जिसे टच डीएनए भी कहते हैं। इससे क्या हुआ है कि निर्दोष हस्तांतरण के मामले बढ़ गए हैं। मतलब मेरा डीएनए किसी ऐसी जगह मिल सकता है जहां मैं कभी गया भी नहीं, शायद किसी तीसरे व्यक्ति के जरिए या किसी चीज के जरिए, और कंटामिनेशन का खतरा भी बढ़ गया है।
ये तो वाकई जटिल है। कोई केस ध्यान में आता है जहाँ ये गतिविधि स्तर का मुद्दा उठाओ?
हाँ, अमांडा नॉक्स का केस जो इटली में हुआ था, वो इसी तरह के डीएनए सबूतों की गतिविधि स्तर की व्याख्या को लेकर बहुत चर्चित और विवादास्पद रहा था। वहाँ एक चाकू पर पीड़िता का डीएनए और हैंडल पर नॉक्स का डीएनए मिला था, लेकिन सवाल यही था कि वो वहाँ कैसे और कब पहुँचा।
समझ गए। संक्षेप में, डिजिटल फॉरेंसिक्स और टॉक्सिकोलॉजी के बारे में फ्रेजर का क्या कहना है? क्या वहाँ भी ऐसी ही चुनौतियाँ हैं?
हाँ, कुछ हद तक मिलती जुलती चुनौतियाँ वहाँ भी हैं। डिजिटल फॉरेंसिक्स यानी कंप्यूटर, मोबाइल, इंटरनेट डेटा का विश्लेषण, ये तेजी से बढ़ रहा है। यहाँ डेटा को इनक्रिप्ट किया जा सकता है, डिलीट किए गए डेटा को वापस लाना मुश्किल हो सकता है, डेटा की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और तकनीक इतनी तेज़ी से बदलती है कि उसके साथ कदम मिलाना मुश्किल होता है।
और टॉक्सिकोलॉजी, जहर या ड्रग्स की जांच?
अब टॉक्सिकोलॉजी में भी नतीजों की व्याख्या सीधी नहीं होती। जैसे किसी व्यक्ति की मौत के बाद उसके शरीर में दवाएं या ड्रग्स कैसे फैलती हैं, ये बदल सकता है। इसे पोस्टमार्टम रीडिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। या किसी व्यक्ति की किसी दवा को सहने की क्षमता, टॉलरेंस क्या थी, ये सब बातें नतीजों के मतलब को बदल सकती हैं। तो हाँ, हर क्षेत्र की अपनी जटिलताएं और व्याख्या की चुनौतियां हैं।
इस पूरी चर्चा से फ्रेजर के काम के मुख्य संदेश क्या उभर कर आते हैं? पहली बात तो मेरे लिए यही है कि हमें निश्चितता के भ्रम से बाहर निकलना होगा। ये शायद ही कभी 100% सर्टन होता है।
हाँ, ये शायद सबसे बड़ा सबक है। फॉरेंसिक विज्ञान पूर्ण निश्चितता नहीं देता, इसीलिए हमें संभाव्यवादी भाषा, प्रोबेबिलिस्टिक लैंग्वेज का इस्तेमाल करना सीखना होगा। मतलब ये बताना कि सबूत किसी एक बात का कितना समर्थन करते हैं बनाम दूसरी बात का। और दूसरा संदेश?
दूसरा संदेश है कि ये क्षेत्र लगातार विकसित हो रहा है। पहले ये शायद ज्यादा व्यक्तिपरक कला जैसा था, अब ये ज्यादा वस्तुनिष्ठ विज्ञान बनने की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन ये सफर अभी जारी है और इसमें लगातार कठोरता, मानकीकरण यानी स्टैंडर्डाइजेशन और तरीकों के सत्यापन यानी मेथड वैलिडेशन की जरूरत है। ये सब बहुत जरूरी है।
और संदर्भ, कॉन्टेक्स्ट की भूमिका तो हर जगह आ रही है। बिना संदर्भ के सबूत का कोई अर्थ नहीं।
बिल्कुल,
ये तीसरा अहम संदेश है। चौथा है गुणवत्ता आश्वासन, क्वालिटी एश्योरेंस का महत्व। लैब्स का मान्यता प्राप्त होना, एक्रेडिटेड होना, नियमित प्रवीणता परीक्षण, प्रोफेशनसी टेस्टिंग, ये सब सिर्फ नियम कायदे नहीं हैं, बल्कि भरोसेमंद नतीजों की गारंटी हैं। इनके बिना जनता और न्याय प्रणाली का विश्वास कायम नहीं रह सकता।
पांचवा मानवीय पहलू, व्याख्या में व्यक्तिपरकता और वो जो आपने कहा कॉग्निटिव बायस, उसका खतरा हमेशा रहता है। वैज्ञानिक भी तो इंसान ही है।
हाँ, और इसीलिए फ्रेजर तार्किक ढांचों, लॉजिकल फ्रेमवर्क्स के इस्तेमाल पर जोर देते हैं, जैसे बायेशियन अप्रोच या लाइक्लीहुड रेशियो।
ये क्या है? ये थोड़े टेक्निकल लग रहे हैं।
हाँ, नाम टेक्निकल हैं पर इनका कॉन्सेप्ट सरल है। ये असल में सबूत के वजन को आंकने के व्यवस्थित तरीके हैं। ये हमें मदद करते हैं कि हम अपनी राय को तर्क और आंकड़ों पर आधारित करें, न कि सिर्फ गट फीलिंग पर। ये सोचने के उपकरण हैं, टूल्स हैं, जो हमें ज्यादा निष्पक्ष मूल्यांकन करने में मदद करते हैं।
अच्छा, और आखिरी संदेश?
आखिर में नैतिक जिम्मेदारी और संचार की चुनौती। वैज्ञानिक को न सिर्फ ईमानदार और निष्पक्ष रहना है, बल्कि अपनी रिपोर्ट की जो अनिश्चितताएं हैं, जो सीमाएं हैं, उनको जजों, वकीलों और जूरी को स्पष्ट रूप से समझाना भी है। और ये अपने आप में एक बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि वैज्ञानिक भाषा अक्सर आम लोगों के लिए जटिल होती है।
सही कहा। फ्रेजर के कुछ विचार वाकई हमें रुककर सोचने पर मजबूर करते हैं। कुछ ऐसे प्रमुख विचार साझा कर सकते हैं जो उनके नजरिए को एकदम सटीक दर्शाते हों?
जरूर। एक केंद्रीय विचार ये है, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, फॉरेंसिक वैज्ञानिक का काम किसी को दोषी या निर्दोष साबित करना नहीं है। उसका काम है निष्पक्ष वैज्ञानिक जानकारी देना, ताकि अदालत सही फैसला ले सके। मतलब वैज्ञानिक वकील या जज नहीं है, वो एक निष्पक्ष सहायक है।
भूमिका की स्पष्टता और अपनी सीमाओं को स्वीकार करने की बात भी बहुत महत्वपूर्ण लगती है।
हाँ, जैसे कि हर फॉरेंसिक तकनीक की अपनी सीमाएं हैं। इन सीमाओं को मानना कमजोरी नहीं, बल्कि वैज्ञानिक परिपक्वता की निशानी है। ईमानदारी से ही भरोसा बनता है। ये कहना कि हम पूरी तरह निश्चित नहीं हैं, एक गलत दावा करने से कहीं बेहतर है।
सबूत के मूल्य को लेके भी उनका नजरिया अलग है पारंपरिक सोच से।
हाँ, वो कहते हैं फॉरेंसिक सबूत का असली मूल्य पूर्ण निश्चितता देने में नहीं, बल्कि इस बात में है कि वो एक स्पष्टकरण को दूसरे की तुलना में कितना ज्यादा संभावित बनाता है। मतलब सबूत तराजू के पलड़े को किस तरफ और कितना झुकाते हैं, ये महत्वपूर्ण है, ना कि वो सीधे हाँ या ना कहें।
व्याख्या के महत्व पर भी उन्होंने काफी जोर दिया है कि सबूत खुद नहीं बोलते।
बिल्कुल, फॉरेंसिक विज्ञान सिर्फ तथ्य खोजने का काम नहीं है बल्कि उन तथ्यों से अनुमान लगाने का काम है। सबूत खुद नहीं बोलते, वो मूक गवाह हैं जिनकी व्याख्या वैज्ञानिक को सावधानी और तर्क से करनी पड़ती है।
और आखिर में डीएनए की व्याख्या को लेकर जो आधुनिक चुनौती है उस पर उनका क्या कहना था?
आओ कहते हैं, आज फॉरेंसिक विज्ञान में सवाल ये डीएनए किसका है से ज्यादा जटिल हो गया है। अब सवाल है, इस डीएनए के यहाँ होने का मतलब क्या है? ये फिर से वही गतिविधि स्तर के मूल्यांकन की जरूरत को उजागर करता है।
तो ये सब जानने का व्यावहारिक फायदा क्या है? आम लोग या मान लीजिए कानून व्यवस्था से जुड़े लोग, वो इस जानकारी का क्या कर सकते हैं?
देखिए, अगर कोई व्यक्ति कभी जूरी में शामिल होता है या पंचायत में कोई फैसला लेता है जहां ऐसे सबूत हों, तो ये समझ उन्हें विशेषज्ञ की गवाही को ज्यादा बारीकी से, ज्यादा आलोचनात्मक ढंग से परखने में मदद करेगी।
कैसे?
वो सिर्फ मैच मिला सुनकर संतुष्ट नहीं होंगे। वो पूछ सकते हैं, अच्छा ये मैच कितना मजबूत है? इस सबूत के वहां निर्दोष रूप से पहुंचने की क्या संभावना है? क्या कोई और तरीका है जिससे ये वहां आ सकता था? क्या आपने दूसरे स्पष्टीकरणों पर विचार किया है? वो क्यों और कैसे पूछना सीख सकते हैं।
और वकीलों और जजों के लिए भी उपयोगी होगा?
निश्चित रूप से, वकील जो हैं वो विशेषज्ञों से ज्यादा प्रभावी सवाल पूछ सकते हैं, ज़राह कर सकते हैं, सबूत के असली वजन को चुनौती दे सकते हैं। जज सबूतों की स्वीकार्यता, एडमिसिबिलिटी और उनके महत्व, उनके वेट का बेहतर मूल्यांकन कर सकते हैं।
और आम लोगों के लिए, जो न जूरी में है न वकील न जज?
आम लोगों के लिए ये हमें क्राइम शो या खबरों को एक ज्यादा सूचित नजरिए से देखने में मदद करता है। हम उस CSI एफर्ट के पिलिज्म से बचते हैं और सबसे बड़ी बात, ये हमारी सामान्य आलोचनात्मक सोच को बेहतर बनाता है। यानी किसी भी दावे पर, चाहे वो फॉरेंसिक हो या कुछ और, आसानी से यकीन करने के बजाय सवाल पूछने की आदत डालता है।
आज की इस बातचीत से मेरे लिए सबसे बड़ा सबक ये है कि फॉरेंसिक विज्ञान के बारे में हमारी आम समझ कितनी सतही है, कितनी अधूरी है। तकनीक अपनी जगह है, पर वो संदर्भ, वो व्याख्या और वो मानवीय पहलू, ये कहीं ज्यादा मायने रखते हैं। ये सिर्फ लैब का काम नहीं, ये दिमाग का काम ज्यादा है।
मेरे लिए सबसे अहम बात है वो बौद्धिक ईमानदारी की जरूरत। ये स्वीकार करना कि विज्ञान, खासकर फॉरेंसिक विज्ञान जैसा लागू विज्ञान, हमेशा पूरी निश्चितता नहीं दे सकता। फ्रेजर का जोर इस बात पर है कि हमें अनिश्चितता को छिपाना नहीं चाहिए बल्कि उसे समझना और सही तरीके से बताना सीखना होगा। और उनका वो गतिविधि स्तर पर फोकस, यानी सबूत वहां कैसे पहुंचा, ये सोचना भविष्य के लिए बहुत जरूरी है, खासकर जब तकनीक और भी ज्यादा संवेदनशील होती जा रही है।
और शायद यही आज का सोचने का बिंदु है हम सब के लिए। जैसे जैसे हमारी तकनीकें और शक्तिशाली होती जा रही हैं, क्या सबूत इकट्ठा करना ज्यादा मुश्किल है या उन सबूतों का सही मतलब निकालना और उस मतलब की सीमाओं को ईमानदारी से बताना, शायद न्याय के लिए दोनों ही पहलू बराबर के अहम हैं।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।